कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। आज हम सभी के बीच में आदरणीय आत्मप्रकाश भाई जी उपस्थित हुए हैं। आदरणीय आत्मप्रकाश भाई जी का खूब खूब हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी स्वागत के लिए हाथ खड़ा करें। ऐसे तो आत्मप्रकाश भाई जी को सभी जानते ही हैं, जानते हैं ना सभी, क्योंकि ये हम सभी को मीठी मीठी टोली खिलाते हैं। इसके लिए ये हमारे मीठे मीठे भाई है तो सभी जानते ही है। तो भ्राता आत्मप्रकाश जी ने ये ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान नागपुर में 1972 में प्राप्त किया और नागपुर विद्यालय से ही आपने MSc स्वर्ण पदक के साथ में पास किया है। गोल्ड मेडलिस्ट है। सन 1976 से माउंट आबू मुख्यालय में अपना जीवन समर्पित किया है और आपने भारत के सभी स्थानों पर सेवा के लिए भ्रमण भी किया है, साथ साथ में देश विदेश में भी आपने अपनी सेवाएं दी है। करीबन 84 देशों में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की है और आप यहां पर युवा प्रभाग जो हमारा यूथ विंग है उसके आप मुख्यालय कोऑर्डिनेटर है, हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर है और साथ साथ में मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन तीनों ही परिसरों का टोली डिपार्टमेंट आप संभालते हैं। तो हम आज आदरणीय राम आत्मप्रकाश भाई जी से सुनेंगे चेहरे और चलन के द्वारा सेवा इस विषय पर।
ओम शांति। चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करना, सेवा करना। बाबा ने कहा था चेहरा और चलन ये सेवा के सर्वोत्कृष्ट साधन है, क्योंकि चेहरा हमारे व्यक्तित्व का परिचय देता है। चित्र से चरित्र स्वतही दिखाई देता है और चलन अर्थात हमारा जो व्यवहार है उस व्यवहार से हमारी चलन कैसी है वो पता चलता है। तो परमात्म पालना में हम सभी पल रहे हैं तो परमात्म पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण है चेहरे पर रूहानियत बढ़ना और चलन में रॉयल्टी बढ़ना। चेहरे पर रूहानियत बढ़े और चलन में रॉयल्टी बढ़े, यह है परमात्म पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे जैसे शारीरिक उम्र बढ़ती है तो बाह्य सुंदरता घटती है लेकिन आंतरिक सुंदरता बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम अभी आगे चलते जाएंगे चेहरे और चलन के द्वारा हमें बहुत सेवा करनी होगी, ये बाबा ने कहा है। चेहरे और चलन के द्वारा हम सेवा करते रहें इसलिए चेहरे पर सदा रूहानियत बढ़ती रहे और चलन में रॉयल्टी बढ़ती रहे, इसलिए हमें कुछ एक बातों पर अभ्यास करना जरूरी है। उसमें भी विशेष 10 बातें हैं। 10 बातों में से जो भी बात आपको याद है उस पर आपको सारे दिन भर में अभ्यास करते रहना है, मेहनत करते रहना है, तो स्वतः ही चेहरे पर रूहानियत बढ़ती जाएगी और चलन में रॉयल्टी बढ़ती जाएगी। तो पहली बात है, चेहरे पर रूहानियत और चलन में रॉयल्टी बढ़ती रहने के लिए सदा हमें स्वयं को मैं विश्व की स्टेज पर हीरो पार्टधारी पार्ट बजा रहा हूं, मैं हीरो पार्टधारी हूं और विश्व की स्टेज पर हूं। केवल बॉम्बे की स्टेज पर नहीं, महाराष्ट्र की स्टेज पर नहीं, लेकिन पूरे विश्व की स्टेज पर मैं हीरो पाठधारी हूं। हजारों आंखें मुझे सदा देखती रहती है, चाहे कमरे में हूं, चाहे अकेले में हूं, चाहे कहीं पर भी हूं, हजारों आंखें मुझे हमेशा देखती रहती हैं। देखती है ना, बाबा के आने के पास आने के पहले कोई देखता भी नहीं था आपको। जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पैर रखा, सब आंखें फाड़ के देखते हैं ये कैसा बैठता है, कैसा खाता है, कैसा चलता है, पहले कोई देखता भी नहीं था, हजारों आंखें देखते हैं। अगर मेरा चेहरा मायूस होगा तो उदासी दान करता जाएगा। बाबा ने हम सभी को जिम्मेदारी दी है खुशियां बांटने की, तो मेरा चेहरा खुशनुमा चेहरा हो, खुशनुमा चेहरे के द्वारा मुझे खुशियां अनेक आत्माओं को बांटते रहना है, ये अटेंशन हमारा सदा रहे। एक स्लोगन कभी ना भूले, भगवान ने हमें सुंदर चेहरा दिया है लेकिन उस पर सदा मुस्कुराहट रखना बहुत जरूरी है। स्लोगन है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। तो माली जो एक बाबा है, हर रोज इस बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचता है, तो वो माली चाहता है मेरे बगीचे का फूल कैसा हो, रोहे गुलाब कैसा हो, केवल खिला नहीं लेकिन बहुत खिला हो। 10 फूल अगर बगीचे में हो गए तो माली देखता है इसमें सबसे बढ़िया फ्रेश कौन सा फूल है, आंखें फाड़ कर देखता है। तो मेरे चेहरे से कभी भी मुस्कुराहट नहीं हटे, मुझे खुशियां बांटना है, ये बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने दी है, समझा। तो चेहरा हरा भरा हो, चेहरा चेहरे पर हमेशा खुशहाली हो, समझा। दूसरी बात, चेहरे पर रूहानियत सदा बढ़ाती के लिए मैं चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम हूं ऐसा हमें समझना है। जैसे हम म्यूजियम में जाते हैं, म्यूजियम में कई बातें पढ़ने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती है, सीखने के लिए मिलती है। और म्यूजियम में कई बातें देखते हैं वो कभी भूलते भी नहीं हम। तो मेरे चैतन्य जो मैं म्यूजियम हूं चलता फिरता, मेरे जीवन से ज्ञान की गहराई की बातें अनेकों को पढ़ने के लिए मिले, कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ प्रेरणा देते रहे। समझा? क्योंकि भगवान के चैतन्य म्यूजियम का मैं शो पीस हूं, शो पीस हूं। कहां का? भगवान जो चैतन्य म्यूजियम बना रहे हैं उसका मैं शो पीस हूं। ग्राहक अपने तरफ खींचने के लिए बढ़िया से बढ़िया शो पीस शोकेस में रखते हैं। तो हम सभी चैतन्य म्यूजियम समझे स्वयं को, या भगवान के शोकेस का मैं शो पीस हूं। इसलिए हमेशा मेरा जीवन भरपूर हो, दिव्य गुणों से संपन्न हो। खुशनुमा हो। तीसरी बात, चेहरा त्याग वाला न हो लेकिन भाग्य वाला दिखाई दे। दुनिया वाले हमारे चेहरे को देखकर ऐसा न सोचे बेचारा इसने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया, सारे दुनिया के सुख छोड़ दिए, बेचारा। त्याग मैंने किया वो मेरे चेहरे पर त्याग नहीं दिखाई दे लेकिन भाग्य दिखाई दे, चेहरे पर भाग्य का सितारा चमकता है तो लोग देखने वाले कहेंगे कि क्या इसका भाग्य है, काश मैं भी ऐसा भाग्यशाली होता तो सचमुच मैं भी भाग्यशाली कहलाता। कोई धनवान कोई रूपवान कोई व्यक्ति देखते हैं तो हमें लगता है काश ऐसा मैं अगर होता तो। तो हमारे चेहरे पर भाग्य अर्थात बिल्कुल रूहानी रुहाब झलकती रहे, इसलिए हमेशा हम भाग्य के गुण गाते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमें मिली है, केवल भगवान नहीं मिला है, भगवान ने सारे खजाने हमें लुटा दिए हैं। केवल खजाने ही नहीं लुटा दिए, सब हम उसकी पालना में हर रोज पल रहे हैं, पालना में पल रहे हैं, चल रहे हैं। कितने भाग्यशाली है, थोड़ी तालियां तो बजाओ जरा, है ना भाग्यशाली। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप बन गया, चाहे जितना मैं भाग्य लूट सकता हूं लुटा सकता हूं, लेकिन चेहरे पर वो भाग्य का नशा दिखाई दे, त्याग वाला चेहरा ना हो। समझा? हमेशा ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था। नंबर वन संसार में आत्मा, सिंपल ड्रेस धोती और कुर्ता, सिंपल ड्रेस, लेकिन चेहरे पर वो रूहानी नशा रहता था। बड़े बड़े राजे भी सहम जाते थे, कहते थे भगवान ने गलती किया, गलती से हमें राजा बनाया, आपको राजा बनाना था, सहम जाते थे। तो चेहरे पर हमेशा भाग्य का नशा दिखाई देता रहे, उसके लिए हमेशा हम अपने भाग्य के गुण गाते रहे और सम्मान के सिंहासन पर सदा बैठे रहे। कौन से सिंहासन पर? भगवान ने मुझे ये सिंहासन दिया है। कोई व्यक्ति ने नहीं दिया, भगवान ने दिया है। चाहे कितना भी अपोजिशन करना पड़े मुझे अपना सिंहासन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है, समझा। इसलिए सारे दिन भर भाग्य के गुण गाते रहें, सोमान के सिंहासन पर बैठते रहें और ईश्वरीय नशे में और ईश्वरीय खुशी में झूमते रहें। ठीक है। चौथी बात, लोग आजकल ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिकल वो जीवन में देखना चाहते हैं, चेहरे पर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। ज्ञान सुन सुन के थक चुके हैं लोग, इसलिए इतना बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान हमें जो बाबा दे रहे हैं, लोग दुनिया वाले चाहते हैं वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल हो। मुरली से हमें क्या मिलती है? युक्तियां मिलती है। योग से हमें शक्तियां मिलती है। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे विकारों से मुक्ति होती है और दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है, हमारा व्यक्तित्व निखरने लगता है, दिव्यता हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। इसलिए हर रोज जो हमें इतनी पालना मिल रही है तो जीवन में परिवर्तन हमें महसूस हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जीवन में हर कदम पर हमें महसूसता की शक्ति और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहें और दिव्यता का परसेंटेज बढ़ता रहे और दिव्य गुणों की धारणा मेरे जीवन में बढ़ती रहे। पंडित और आचार्य में अंतर क्या है? पंडित केवल रटी रटाई बातें रटता है तोते की तरह लोगों के सामने, और आचार्य पहले आचरण में लाता है फिर दुनिया वालों के सामने रखता है, वो लोगों के दिल को टच करती है। तो ज्ञान और योग इज इक्वल टू धारणा। जितना ज्ञान और योग बुद्धि में बढ़ता जाता है, दिव्य गुणों की धारणा होने लगती है, और जितनी दिव्य गुणों की धारणा होने लगती है, हमारे चेहरे और चलन से अनेकों की सेवा होती रहती है। समझा। पांचवी बात, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अगर हमारे चेहरे पर मायूसी है, हम कितना भी छिपाएं, सामने वाला व्यक्ति पकड़ लेता है, कुछ जरूर दिल में है बता दो। नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। बिल्कुल नहीं है, सच चेहरा बोल रहा है तुम्हारा। तो मन की प्रसन्नता चेहरे पर खुशहाली के रूप में झलकती है। फेस इज अ मिरर ऑफ अवर माइंड। और मन प्रसन्न अगर है तो चेहरा प्रसन्न स्वतः ही दिखाई देता है। और हमारी प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर बार बार हमारे दरवाजा खटखटाते हैं, चिंता, भय और बोझ। ये तीन चोर बार बार मन का दरवाजा खटखटाते हैं, किसी को हमने फटकने नहीं देना है। चिंता, भय और बोझ, कोई भी प्रकार का बोझ। तो चिंतामणि बाप मुझे मिल गया, चिंता किस बात की? पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने की चिंता थी, वो तो मुझे मिल गया, अभी और कौन सी चिंता है? सब चिंताएं खत्म हो गई। एक ही चिंता मुझे है, कर्मातीत बनने की, संपूर्ण बनने की एक ही चिंता है। भय, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, बैकबोन है मेरा, तो भय की चिंता? बाबा कहते याद अगर है तो मैं आपके साथ हूं, याद नहीं है तो आप मेरी शक्तियों को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप मेरा बैकबोन है, इसलिए मुझे भय किस चीज का?
और बोझ बाबा ऊपर से देख रहे थे द्वापर युग से मेरे बच्चे बहुत बोझ ढो रहे हैं, जब मैं धरती पर जाऊंगा तो मैं बच्चों का बोझ ले लूंगा, बच्चों को सदा हल्का रखूंगा। तो सारी दुनिया का बोझ ढोने वाला लेने वाला बाप मेरा बन चुका है, मेरा बोझ नहीं लेगा। तो मैं तीनों बातें खत्म हो गई, सदा प्रसन्न रहते हैं। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसीय बनते हैं, उन्हों की ही लोग प्रशंसा करते हैं। जो हमेशा प्रसन्न हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, समझा। हम देखते हैं बाबा इतने सालों से हमारी पालना कर रहा है, हर रोज हम ज्ञान योग की पालना करते हैं, मुरली सुनते हैं, चार दीवारों में हम झूमने लगते हैं, और जैसे सेंटर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है भाई, चेहरा ऑर्डिनरी हो जाता है, चेहरे पर खुशी नहीं आती है, जो भगवान पढ़ा रहे चेहरा बोलता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है भाई जी, इतने सालों से बाबा पालना कर रहे हैं लेकिन चेहरे पर खुशहाली दिखाई नहीं देती है, टेम्पररी आती है अब चली जाती है, कारण क्या है इसका, कारण ढूंढेंगे तो निवारण कर सकेंगे ना। उसका कारण ये है, ढाई सतयुग त्रेता युग में हम राजे महाराजे थे, रॉयल परिवार वाले थे, और नीचे जैसे सतयुग त्रेता युग पूरा होते ही द्वापर युग में पहुंच गए, माया ने किडनैप कर लिया और जेल में ठोक दिया 2500 साल तक। कितने साल तक, एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, 2500 साल तक माया की जेल में ठोक दिया। उसके कारण आत्मा में जोर जो हीन भावना है ना, वो कूट कूट कर भरी पड़ी है, वो हमें उभरने नहीं देती है। तो हमें सतयुग त्रेतायुग के भाग को देखना है, द्वापर कलयुग को नहीं देखना है। तो खोया हुआ नशा, खोया हुई खुशी, खोया हुआ जो भाव है हमारे चेहरे पर अतही सुतही छाता दिखाई देता है, समझा। चेहरे पर विशेष नशा कहां दिखाई देता है, चेहरे पर कहां दिखाई, आंखों में दिखाई देता है। कितना नशा चढ़ा हुआ है वो आंखें बताती है। दुनिया का नशा पीते हैं आंखें लाल होती है तांबे की तरह, गटर में पड़ा है कहते मैं तो स्वर्ग में हूं, आंखें लाल है। ऐसे जब ईश्वरीय नशा बढ़ने लगता है वो आंखों में खुमारी दिखाई देती है, और हम अपनी दुनिया में अनुभव करते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर अनुभव करते हैं। ये घटिया दुनिया है माया, हम तो अपने अलौकिक दुनिया में हमें स्वयं को विचरण करते हुए अनुभव करते हैं, समझा। तो स्वमान में सदा स्थित रहना है, स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना है, कोई दे न दे उससे मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे स्वयं को मान देते रहना है। और जो बाबा ने स्वमान का सिंहासन दिया है वो टाइटल हमेशा आत्मा के साथ जुटा हुआ रखना है, केवल आत्मा नहीं हूं लेकिन महान आत्मा हूं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ये टाइटल जोड़ते ही आपका नशा सातवें आसमान को छूने लगता है, समझा। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से सारे दिन भर में हमें स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना है। छठवीं बात, चेहरे पर हमेशा रूहानियत लाने के लिए ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। एकदम फोटो कॉपी बाबा की हमारे सामने हो, शुरू दिन से जैसे बाबा को नारायणी नशा रहता था ऐसा मुझे फॉलो करना है। कई कहते हैं भाई हमने तो बाबा को नहीं देखा है कैसे हम फॉलो करेंगे, कोई बात नहीं, अभी शिव बाबा जो है दादी जी के तन में डायमंड हॉल के स्टेज पर जब आते हैं, बाबा का चेहरा केवल देखो, चेहरा बोलता है विश्व की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आकर बैठी है, चेहरा बोलता है। और जैसे महावाक्य उच्चारण करते हैं बाबा, वो वर्ल्ड की सुप्रीम अथॉरिटी की वो नशा है, ऑटोमेटिक बाबा के बोल में स्पष्ट दिखाई देती है, अनुभव होती है। तो बाबा ये किसी और का बाबा नहीं है, मेरा बाप है वो, उसने मुझे अडॉप्ट किया है, उसमें मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे साथ देने के लिए प्रॉमिस किया है। तो जैसा बाबा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं वो नशा प्रैक्टिकल है, ऐसा मुझे बाबा को फॉलो करना है। मैं ज्ञान में आया 72 में, 3 साल तक मेरी झोली खाली थी, कुछ भी मेरा जीरो प्रोग्रेस था, जिंदा था केवल, माया ने किडनैप नहीं किया, उतना ही बचा था। मैंने सोचा बात क्या है, मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, ज्ञान तो छोड़ने की तो नौबत आई थी। मैंने कहा इसका कारण मुझे ढूंढना है, कारण ढूंढा, क्या कारण था, मेरा चेहरा जो है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के तरफ था, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, यूजलेस हूं, मेरे मन में कैसे संकल्प चलते हैं, ऐसे वैसे दीन भावना का शिकार था। मैंने अपने चेहरे को हीन भावना से टर्न करके समान के तरफ टर्न किया, और कौन कहता है हीन भावना हीन हूं दीन हूं, स्वयं भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया हुआ है, मैं महान आत्मा हूं, राज ऋषि आत्मा हूं। जैसे जैसा सम्मान देता गया और अनुभव करता रहा, वो पहाड़ी पर चोटी पर खड़ा हूं अभी। तालियां तो बजाओ मेरे लिए जरा। खड्डे में पड़ा था, खाई में पड़ा था, और भी वहां खड़ा हूं, ये चमत्कार है सम्मान का। पहले जन्म से हम सीढ़ियां उतरते उतरते 84 जन्मों की सीढ़ियां हो गई, लास्ट जन्म में पहुंचे हैं। अभी लास्ट जन्म में से पहले जन्म में पहुंचना है ना, तो लिफ्ट चाहिए ना भाई। बॉम्बे में मल्टी स्टोरीज में तो लिफ्ट के बिना काम नहीं चलता है। अभी ये 84वां जो फ्लोर है वहां चढ़ना है, तो दो ही लिफ्ट है भाई, एक सोमान की लिफ्ट है और दूसरी योगाभ्यास की लिफ्ट है। इसमें बैठना होगा तभी आप फटाफट वहां पहुंच सकते हैं, नहीं तो पहुंच नहीं सकते। सोमान की सीट पर बैठ जाओ, लिफ्ट में बैठ जाओ, सीधा वहां पहुंचो। जो पहले जन्म में आपको सोमान आपका था, नशा था, रुहाब था, वो आपके चेहरे पर स्वतः आप अनुभव करने लगेंगे। नशा प्राप्ति होने के लिए वो अभ्यास करना है, और आत्मा में शक्ति भरने के लिए योग का अभ्यास करना है। तो स्वतः ही दोनों बातें हमें संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचा देगी। कितनी माँ है आपको, कितनी माँ है? बस दो ही है, तीन ही है, बहुत है, बाप है, बाप है। भाई मेरे को तो 5 माँ है, बहुत नहीं 5 है। देखो, एक तो ब्रह्म माँ, दूसरी मम माँ, तीसरी ड्रामा, चौथी परमात्मा, और पांचवी जिसने शरीर पैदा किया वो लौकिक माँ। 5 माँ हो गए भाई। अब 5 माँ की पालना मिल रही है, 3 बाप की पालना मिल रही है, इतना पालना मिलने के बाद भी चेहरे पर वो रूहानी नशा नहीं है, तो फिर कैसे होगा भाई? हाँ, राजमा खाएंगे खिलाएंगे आपको। और बाप कितने भाई, कौन से है? 3 बताओ, लौकिक है, अलौकिक है और पारलौकिक है। मेरे तो अलग है भाई, एक तो बिंदी है, दूसरा सिंधी है और तीसरा हिंदी है, 3 बाप में से। बिंदी, सिंधी और हिंदी,
ठीक है ना। सातवीं बात है, चेहरे पर सदा रूहानियत बढ़ाने के लिए कर्म क्षेत्र में स्वयं को मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ इस स्वमान में रहते हुए हमें कर्म करना है। मैं खुदाई खिज़मतगार हूँ, खुदा ने मुझे खिज़मत देने के लिए खिज़मत दी है। जब भी हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं, चाहे लौकिक सेवा या अलौकिक सेवा हो, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ। फरिश्ते का अवतार के रूप में मैं अवतरित हुआ हूँ सेवा करने के लिए। तो फरिश्ते में तीन बातों की संपन्नता होती है। ईश्वरीय नशे से वो संपन्न होता है, ईश्वरीय गुणों से वो संपन्न होता है, ईश्वरीय शक्तियों से वो संपन्न होता है। तीन बातों की संपन्नता उसके जीवन में होती है, नशे से संपन्न, शक्तियों से संपन्न और गुणों से संपन्न। और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मुझ फरिश्ते ने धारण किया हुआ है और उसके साथ मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट ज्ञान सूर्य परमात्मा से परम धाम में जुटी हुई है, ऐसा अनुभव करते जाना है और कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करते जाना है। तो स्वतः ही हमारे चेहरे पर वो रूहानियत बढ़ती जाएगी और रॉयल्टी भी हमारी बढ़ती जाएगी। कहते हॉल खुश हो और चाल फरिश्ते जैसी हो। मधुबन में ब्रह्मा बाबा को कहीं पर भी चलते हुए देखते थे ना, बड़े रॉयल्टी बाबा के चलने में बोलने में इसमें दिखाई देती थी, झलकती थी। तो मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं, साधारण व्यक्ति नहीं हूं लेकिन कर्म योगी फरिश्ता हूं। भगवान ने मुझे ये सेवा दी है। टाटा की कंपनी में आपने आपको अमेरिका में भेजा है सेवा के लिए, नौकरी कर रहे हैं वहां अमेरिका में, तो हमेशा बुद्धि में होगी टाटा कंपनी के लिए मैं अपना सेवा कर रहा हूं। तो ऐसे खुदा ने मुझे भेजा है कर्म योगी फरिश्ता के रूप में सेवा करने के लिए। तो बाबा की याद भी सहज रहेगी और वो रूहानी नशा भी हमारे चेहरे पर स्वतः ही दिखाई देगा, देखने वालों को भी हमें भी अनुभव होता जाएगा। समझा? दूसरी बात कौन सी? आठवीं बात, दिव्यता संपन्न चेहरा दिव्यता को अपनाने की हिम्मत और साहस दिलाता है। दिव्यता संपन्न चेहरा दूसरों को दिव्यता धारण करने के लिए हिम्मत और साहस दिलाता है। मैं जब ज्ञान में आया 72 में, 22 साल की उम्र थी मेरी, सोचता था पवित्रता सारा जीवन धारण करना ये कैसे संभव होगा। तो जब 73 में यहां बाबा से मिलने आया मधुबन में, हिस्ट्री हॉल में मिला था, उस समय ये हॉल भी नहीं था, लेकिन एक भाई का चेहरा मैंने देखा, एकदम चमचमाता चेहरा देखा। उस भाई को बुलाया, इधर आओ बैठो, मुझे अपना पवित्रता का अनुभव बिल्कुल सच्चाई से शेयर करो। जब उसने अपना अनुभव शेयर किया तो मुझे हिम्मत आ गई, साहस आ गया, अगर ये व्यक्ति धारण करता है पवित्रता को तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे हिम्मत आ गई और उस आत्मा के प्रति मेरे दिल में एक दुआ निकली। तो हमारे रूहानी चेहरे के द्वारा अनेक आत्माओं को दिव्य गुण धारण करने के लिए हिम्मत मिलती है।
कईयों को सहनशीलता को कैसे धारण करें, धैर्यता को कैसे धारण करें, निर्भयता को कैसे धारण करें, अंदर में हिम्मत नहीं होती है, लेकिन हमारे चेहरे के द्वारा उन्होंने को हिम्मत मिलती है। 76 में मैं यहां आया सेवा के लिए, बाबा से हिस्ट्री हॉल में मिल रहा था, हम 60 सेवाधारी थे। बाबा ने मिलते हुए एक बात हमें बताई, मधुबन में आप सेवाधारी के रूप में आए हो, आपको एक ही समय ट्रिपल सेवा करनी है। अब सेवा तो यहां कर्मणा सेवा ही है, और तो सेवा दूसरी है ही नहीं, तो एक तो कर्मणा सेवा हो गई, दूसरी योग के द्वारा मनसा सेवा हो गई, और तीसरा दिव्य गुणों से संपन्न चेहरे के द्वारा गुणों का दान करने की सेवा भी आपको करते रहना है, ऐसा बाबा ने कहा था। ज्ञानी को तो ज्ञान नहीं दे सकते हैं ना, तो ज्ञानियों की सेवा अगर करना है तो कैसे करेंगे, दिव्य गुणों के संपन्न चेहरे के द्वारा गुणों का दान दे सकते हैं। जितनों को गुणों का दान देते जाएंगे उतना उनके दिल की दुआएं हमें मिलती हैं और हमारी कमाई आगे बढ़ती रहती है। आठवीं बात, नौवीं बात, चेहरे पर संपन्नता बढ़ाने के लिए, दिव्यता बढ़ाने के लिए हमेशा याद रखना है, मुझे रोल मॉडल बनना है। दुनिया में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो ढूंढता है रोल मॉडल मेरे लिए कौन सा है। तो मुझे रोल मॉडल बनना है, जैसे हमने देखा प्रकाश मणि दादी जी रोल मॉडल थी और दादी जी के जीवन के द्वारा अनेकों को प्रेरणा मिलती थी, अंत तक दादी ने अपने चेहरे के द्वारा, रूहानी चेहरे के द्वारा सेवा की, दादी के चेहरे के द्वारा ममत्व, ममतामयी माँ का ममत्व हर कोई अनुभव करता था, अपनत्व अनुभव करता था, तो ऐसे दादी ने अंत तक चेहरा की रोल मॉडल बनकर वो विश्व लीडर बन गए। तो ऐसे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रोल मॉडल बनना है, तो स्वयं आगे बढ़ते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं आगे बढ़कर अनेकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना, ये उससे बढ़कर बात है। क्योंकि अनेकों को, जितनों को हम प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनके दिल की दुआएं हमें मिलती है, वही हमारा कमीशन है, वही हमारी कमाई होती है। इसलिए वो चांस हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। और दसवीं बात, चेहरे पर रूहानियत बढ़ाने के लिए हमेशा याद रखें कि मेरा चेहरे के द्वारा मुझे प्रभु का साक्षात्कार कराना है। ये बुद्धि में फिट रहे। परमात्मा निराकार है, परमात्मा गुप्त है, परमात्मा की शक्तियां भी गुप्त है, तो उनकी प्रत्यक्षता इस संसार में कैसे होगी। किसी भी अच्छी मूर्ति को देखते हैं तो मूर्तिकार की याद आती है, किसी भी अच्छी कला को देखते हैं तो कलाकार की याद आती है, चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है। तो ऐसी सुंदर रचना को लोग देखेंगे कि ऐसी सुंदर अलौकिक रचना इतनी सुंदर है, तो रचयिता कैसा कितना सुंदर होगा। तो ऐसी महान योगी आत्माओं के द्वारा, चेहरे संपन्न चेहरे आत्माओं के द्वारा परमात्मा की तरफ ध्यान जाएगा और परमात्मा की प्रत्यक्षता ऐसी महान आत्माओं के द्वारा इस संसार में होगी। इसलिए मुझे उसमें अपनी अहम भूमिका निभाना है, मेरे चेहरे के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता रहे, इसलिए चेहरा रूहानी संपन्न हो। बाबा ने कहा आपकी आंखें टीवी का काम करेगी, आप तो बुद्धि के द्वारा परमात्मा से जोड़कर परमात्मा के साथ अनेक संबंधों की लीलाएं का अनुभव करेंगे, और वो लीलाएं जो हैं अनेक आत्माएं आंखें आपकी आंखों रूपी टीवी में देखेंगे और खुशी में झूमते रहेंगे, आप अनुभव करेंगे और वो देख देख कर ही खुशी मनाएंगे। समझा क्या। इसलिए बाबा ने स्पष्ट कहा है वाचा कर्मणा सेवा तो करनी ही है, लेकिन वाचा कर्मणा सेवा करते करते हमें विशेष चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करना है, उसके लिए मुझे वो साधन जुटाना है, ऐसा अंदर ही अंदर अभ्यास करते जाना है। समझा। मैं एक बार आबू रोड से जा रहा था अहमदाबाद ट्रेन में, एक कोच में बैठा था और दूसरे कंपार्टमेंट में लोग नॉन बीके थे, तो वो बातें कर रहे थे बीके को कैसे पहचानेंगे। मैं बड़े कान लगा के देख रहा था ये बोल क्या रहे है। इसकी दो निशानियां हैं, कपड़े भले सफेद हो या न हो लेकिन दो निशानियां हैं। पहली निशानी तो उसके चेहरे पर खुशी होगी, ढूंढ के भी खुशी नहीं मिलती है लोगों के चेहरे पर आप देखो। और दूसरा उन्होंने कहा जिस उसके चेहरे पर चमक होगी, समझ लो वो बीके है। अभी देखो अज्ञानी लोग भी इस बात को मान रहे हैं, खुशी की झलक है और पवित्रता की चमक है, तो मान लो वो बीके है। ये प्रैक्टिकल लोग मान रहे हैं अभी, क्योंकि लोगों को अहंकार है, वो ज्ञान सुनना भी नहीं चाहते हैं लेकिन देखना चाहते हैं। परमात्मा इतना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं, उसका प्रमाण हम देखना चाहते हैं। समझा क्या? कई बार हम देखते हैं कि भगवान यहां पढ़ाते हैं लेकिन इस संस्था में तो बहुत साधारण लोग आते हैं, कोई हाई फाई व्यक्ति, कोई धनवान, कोई रूपवान, कोई ऐसा व्यक्ति तो आता ही नहीं है। कि लोग कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं यहाँ, कोई ऐसा व्यक्ति आता है ना, दो चार दिन आता है और तीन चार दिन के बाद में भाग जाता है। ये तो सिंपल लोग है यहाँ आते हैं। भगवान अगर यहाँ पढ़ाते हैं तो हाई फाई व्यक्ति आने चाहिए ना, आई कैची पर्सनैलिटी यहाँ आने चाहिए, बहुत धनवान रूपवान लोग आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास वाले लोग हैं। बाबा के बच्चे केवल सिंपल ही होंगे भाई, इसका कारण बताओ। मेजोरिटी आप बाबा के देखो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास वाले होंगे, है जी? उसका कारण ये है, सतयुग के जो राजे महाराजे रॉयल परिवार के होते हैं, धीरे 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 नीचे उतरते 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 हैं, लास्ट जन्म में जो है वो मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास तक पहुंचते हैं। और सारे यहां बैठे हैं, जो भी हाई फाई लोग आते हैं ना, वो अभी अभी आए हुए हैं, हमने तो मक्खन खा के बैठे अब उनको बचा हुआ छांस मिल रहा है, वो भी हमारे से देखा नहीं जाता है। क्या अंबानी है, क्या ये है, क्या है, अरे आपके सामने कुछ नहीं है। तो जो नशा हमारे पहले जन्म में था वो नशा हमको और पुनः प्राप्त करना है। भले ये ड्रेस साधारण है, शरीर भी साधारण है, लेकिन आत्मा को वो नशा चढ़ाना है। और धीरे धीरे शरीर छूटने के बाद उसी रॉयल परिवार में राजा महाराजा के रूप में हमारा जन्म होना चाहिए, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा संस्कार साथ में लेकर जाती है। ईश्वरीय नशे में सदा जो स्थित रहते हैं उनके रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार ऑटोमेटिक आत्मा में वो धारण होते हैं। कैसी ये प्रोसेस है? जब हम स्वयं को बहुत ऊंची शान में अनुभव करते हैं, ईश्वरीय नशे में अनुभव करते हैं, ऐसी श्रेष्ठ संकल्प हमारे चलते हैं, श्रेष्ठ बोल चलते हैं, श्रेष्ठ कर्म चलते हैं, श्रेष्ठ संस्कार होते हैं और आत्मा में वो धारण होते हैं, तो परम धाम से ऐसे ही नीचे उतरते हैं, ऐसे ही बहुत बड़े रॉयल परिवार में राजा महाराजा के घर में हमें जन्म स्वतः ही मिलता है। समझा क्या? तो अभी संस्कार, रॉयल संस्कारों को धारण करने का समय चल रहा है, इसलिए जितना ऊंचा नशा होगा उतना रॉयल संस्कार हमारे होंगे। प्रजा क्वालिटी माना बहुत लो नशा, राजा क्वालिटी माना बहुत ऊंचा नशा। अपने को चेक करो कौन सी पोजीशन आपको सत्युक्त एक में प्राप्त करना है, वो आपके हाथ में है। समझा? तो अभी हम 10 मिनट के लिए बहुत पावरफुल योग की अनुभूति करेंगे। करना चाहते हैं ना भाई? सभी करना चाहते हैं? चलो सभी, चलो अलर्ट होके बैठेंगे, सभी चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति।
इस बेहरूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा राजा अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे चेहरे पर रूहानियत से संपन्नता अनुभव हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं महान भाग्यशाली आत्मा राजा हूं। भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मस आत्मा रूपी चैतन्य सितारे से चारों फैल रहे हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को छोड़कर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ते हुए जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रहे हो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए हो जहां चारों हो सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। इतनी हल्की फुल्की ड्रेस है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके प्रकटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे। स्नेह के सागर बाबा अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में मैं फरिश्ता झूल रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ते हुए जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। ओह कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। ओह मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बच चुके मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिल आराम बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिविरा से बेहद शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ बिंदु आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिविरा से अथाह शक्तियां प्रचंड शक्तियां अनंत शक्ति ग्रहण कर रही हूं करती जा रही हूं। योग के प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्धा हो रहे। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रहे हैं कि हां सूर्य की तपत में तप रही हूं, शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है जो मैं आत्मा डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे बाबा, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में प्रकृति के बीच विराजमान हो चुकी हूं। मौसम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं, वायुमंडल को प्रकंपित करके चार्ज कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे सुपिता निराकार है वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु। ओम शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आत्मा प्रकाश भाई जी, हम सभी की तरफ से हमें योग का प्रयोग करा के आपने भरपूर भी कर दिया और साथ साथ सुंदर सी 10 विधि बता दी चेहरे और चलन के द्वारा कैसे सेवा करनी है, तो ये हमें बहुत ही उपयोगी होगी। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।